दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज बुध है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकते हैं नगमा सहर और अदब खजाना। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब 21 से 28 आयत तक। एक दिन यस्सु जनासरत से रवाना होकर सूरो सैदून के इलाके में गया और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावन दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावन, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यसु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। असीस दोस्तों, इसे कबल वाकई में यीशु ने साबित कर दिया कि हर किस्म की खुराक पाक है। और अब यहाँ यीशु ये कहता है कि गैर कौम लोग नापाक नहीं हैं। अब यीशु शुमाल में वाकई सूर और सदा की सरहदों में गया। इस इलाके को सूर नफी के भी कहते हैं। वो एक घर में दाखिल हुआ और न चाहता था कि कोई जाने, लेकिन उसकी शोहरत उससे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। जल्द ही लोगों को उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया और एक गैर कौम औरत उसके पास आकर अपनी बदरू गरिफ्ता बेटी के लिए दरख्वास्त करने लगी। हम इस हकीकत पर जोर देंगे कि वो यूनानी थी, यहूदी नहीं थी। यहूदी खुदा की बरगजीदा कौम थी और खुदा के हजूर में खास एहसास और मकाम रखते। उसने उनके साथ नहायत बड़े और आला वादे कर रखे थे, अपना कलाम उनके सुपुर्द किया था और पहले खैमे इज्तमा में और बाद में हैकल में उनके दरमियान सुकूनत करता था। इसके बरक्स गैर कौम लोग इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ, ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। खुदावंद यीशु पहले इसराइली कौम के पास आया था। उसने खुद को बतौर बादशाह कौम के सामने पेश किया। खुशखबरी पहले इसराइल के घराने को सुनाई गई। ये बात समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि उसने सूर नफी की औरत से जो सलूक किया उसका पस मंजर क्या है। जब उसने दरखास्त की कि यीशु बदरू को उसकी बेटी में से निकाले तो लगता है कि उसने दरखास्त न मंजूर कर दी। यीशु ने कहा, पहले इसराइलियों को सैर होने दो, और ये भी कि रोटी लेकर कुत्तों यानी गैर कौम वालों को डाल देना अच्छा नहीं। उसका जवाब इनकार नहीं था, उसने कहा था कि पहले इसराइलियों को सैर होने दो। ये लफ्ज बहुत सख्त मालूम होते हैं। दरअसल इनसे उसकी तौबा और ईमान का इम्तिहान करना मकसूद था। उस वक्त खुदावंद की खिदमत बुनियादी तौर पर यहूदियों के लिए थी। गैर कौम होने के बाद खुदावंद या उससे मिलने वाले फायद पर उसका कोई हक नहीं था। क्या वो इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार थी? उसने ये बात तस्लीम की। उसने जो कुछ कहा हकीकतन इसका मतलब है कि हाँ खुदावन, मैं एक गैर कौम हकीर हूँ और मैं देखती हूँ कि कुत्ते भी मेज के तले इसराइलियों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं, और मेरी दरखास्त भी सिर्फ इतनी ही है कि यहूदियों के दरमियान तेरी खिदमत के चंद बचे हुए टुकड़े मुझे भी दे दे। ये ईमान नहायत काबिले तारीफ है, और खुदावन ने फील फूर इसका अजर देकर लड़की को दूर ही से शिफा अतायत की। जब वो औरत घर पहुंची तो बेटी को पूरे तौर पर सेहतयाब पाया।
सामिन प्रोग्राम पेशे खिदमत है अदब खजाना। हाजिर खिदमत है आपके मेजबान यूनस सनी और आमिर सुहेल। हमारी जानिब से हमारा अकीदत और चाहत भरा सलाम कबूल कीजिए।
सामिन, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।
सामिन, फूल सिर्फ क्यारियों और गमलों में ही नहीं खिलते, ये दिलों में भी उगते हैं। कृष्ण चंद्र के एक जादूगर कलम से लिखी हुई फिक्र अंगेज कहानी आपको सुना रहे हैं, जिसका उन्वान है तन्हाई का फूल।
जी सामिन, तो समाज फरमाइए ये खूबसूरत कहानी। तुम्हें किस तरह का मकान चाहिए? किराए के मकान के दलाल ने मुझसे पूछा। वो मुझसे तुम कहकर मुखातिब ना होता, लेकिन उसने मेरी बौसीदा पतलून पर नजर डालकर ऐसा किया था। मुझे ऐसा मकान चाहिए जिसमें कमरा तो बेशक एक हो, लेकिन उसके साथ गुसलखाना, सामने बागीचा हो, उसमें हरी घास हो और हरी घास के किनारे फूल हों।
दलाल ने मेरे करीब आकर बहुत आहिस्ता से पूछा, किराया क्या दोगे? 25 रुपए। 25 रुपए? दलाल जोर से चीखा, 25 रुपए में सिर्फ घास आ सकती है, मकान नहीं।
मैंने कहा, मैंने तुम्हें मकान दिलाने के 3 रुपए अदा कर दिए हैं। ये बात तुम्हें रकम वसूल करने से पहले कहनी चाहिए थी। अब सीधे सीधे मकान दिखाओ।
दलाल 3 रुपयों की रस्सी से बंधा एक अड़ियल टट्टू की तरह चलने लगा। मैंने सोचा, हर शख्स के गले में एक रस्सी होती है, 3 रुपए वाली, 300 रुपए वाली, 3,000 वाली या 3 लाख वाली, लेकिन रस्सी हर एक के गले में होती है। यूं तो मुझे भी अपने गले के लिए एक रस्सी की तलाश थी, लेकिन 3 रुपए वाली नहीं, फांसी वाली। मैंने मरने का फैसला कर लिया था।
चलते चलते मेरे दिल ने मुझसे पूछा, जब तुम मरने का फैसला कर ही चुके हो तो मकान तलाश करने की क्या जरूरत है? मैंने अपने दिल से कहा, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत को पहुंच गया हूं। तुम्हारी वजह से मैंने गलत औरत से मोहब्बत की, अपने लिए गलत पेशा इख्तियार किया। अब तुम मेरे और मेरी मौत के दरमियान बोलने वाले होते कौन हो? मैं बोलता कहां हूं? दिल ने कहा, इंतहाई इनकसारी के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर जब मरना ठहरा तो मकान तलाश करने की जरूरत क्या है? क्यों ना एक पेड़ तलाश कर लिया जाए, एक दरिया, एक झील या रेलगाड़ी का पहिया या कोई तेज सा चुटकी भर जहर।
तुम बड़े अहमक हो, मैंने दिल से कहा, आज तक तुम मुझे ना समझ सके। मुझ जैसा इंसान एक आमियाना और सस्ती किस्म की मौत भला कैसे मर सकता है? मैं एक बहार अफरोज मौत चाहता हूँ, एक खूबसूरत कमरा, लैम्प शेड की मध्यम मध्यम सुनहरी रोशनी में मेरे हाथों में छलकता हुआ जाम और छत के पंखे के कुंडे से लटकती हुई रेशमी डोरी में मेरा झूलता हुआ जिस्म।
दिल चुप हो गया। सामने एक मकान भी आ गया, उम्दा मकान था। एक लहरियेदार सीढ़ी पर चढ़कर पहली मंजिल पर एक खूबसूरत सा कमरा था। हर दीवार का रंग अलग था। गुसलखाना बहुत बड़ा, साफ और सुथरा था। फर्श पर सफेद टाइलें, दीवारों पर हल्के नीले रंग की टाइलें, हरे रंग का वॉश बेसन और इसी रंग का नहाने का टब। सामने खिड़की से निचली मंजिल का बरामदा और बरामदे से बाहर का बागीचा नजर आता था, जिस पर हरी हरी घास के किनारे फूल खिले हुए थे। मैंने खुश होकर सोचा, आहा, खुदकुशी करने के लिए कितनी अच्छी जगह है। फिर मैंने फौरन मुड़कर दलाल से पूछा, इसका किराया कितना होगा? 400 रुपए। अहमद, मैंने बड़ा दिल रंजीदा होकर कहा, तुमने तो 2500 रुपए वाला मकान दिखाने को कहा था।
दलाल मुझसे कुछ कहे बगैर सीढ़ियां उतर गया। दूसरा मकान जो दलाल ने मुझे दिखाया वो भी अच्छा खासा था। पहले मकान जैसा तो ना था, मगर उम्दा और साफ सुथरा जरूर था। कमरे सिर्फ दो थे और दोनों एक ही गुसलखाने में खुलते थे। एक तरफ बबरची खाना था, उससे बाहर बरामदा, और बरामदे के नीचे एक खुशनुमा सहन में हरी घास उगी हुई थी। इसमें फूल कहाँ है? मैंने दलाल से पूछा। फूल खुद उगा सकते हो, वो बोला, धूप वाली छतरी खरीद सकते हो। छतरी के नीचे किसी हसीना के बजाय तुम अपनी बीवी बिठा सकते हो।
फूल उगाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने कहा। धूप वाली छतरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और बीवी, मियां बीवी मेरे पास होती तो मैं मकान ढूंढता। अच्छा, खैर, जिस काम के लिए मुझे मकान चाहिए ये भी ठीक रहेगा। मैं घास फूस का एक गमला रख लूंगा। गमले के ऊपर एक धूप वाली छतरी की बजाय अपनी बोसीदा काली छतरी रखूंगा और उसके अंदर एक हसीना का तस्वर भी कर लूंगा। मगर इसका किराया क्या होगा? 250 रुपए। अहमद, 250 रुपए वाला मकान क्यों दिखाते हो? सिर्फ 2500 रुपए वाला मकान चाहिए। दलाल ने मेरी बात का जवाब ना दिया और चुपके से बाहर आ गया।
तीसरा मकान जो मैंने देखा उसमें सबसे पहले गुसलखाना आता था, फिर सीढ़ियां चढ़कर एक कमरा आता था। कमरे के साथ ही एक बावर्ची खाना भी था। इस इलाके में जितने मकान बने हुए थे इनमें रहने वाले कमरे के साथ ही बावर्ची खाना रखा गया है और गुसलखाना सीढ़ियों में। ये क्यों? ये इसलिए कि औरत बावर्ची खाने में रहकर हर वक्त अपने शौहर पर नजर रख सकती है। देखो, इस बावर्ची खाने के साथ वाला कमरा नीचे जाने वाली सीढ़ी के सामने का गुसलखाना तक नजर आता है।
मैंने कहा, खैरियत गुजरी, मेरी कोई बीवी नहीं, इसलिए मैं किसी की निगेबानी से नहीं डरता। रहा गुसलखाने के दूर होने का सवाल, तो मेरा क्या है? मैं गुसलखाने को बावर्ची खाना और बावर्ची खाने को गुसलखाने के तौर पर इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे तो दोनों एक ही तरह के बने हुए नजर आते हैं। दलाल ने मेरी फरासत की दाद देते हुए कहा, वो आप जाने और मालिक जाने। अगर ये मकान आपको पसंद है तो निकालिए 100 रुपए।
अरे भाई, मैंने हाथ जोड़कर दलाल से कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ 2500 रुपए वाला मकान दिखाने को कहा है और तुम हो कि सैकड़ों की बात करते हो। दलाल ने कहा, मेरा काम तो आपको मकान दिखाना है, क्या मालूम आपको कौन सा पसंद आ जाए। अब दलाल मुझे जिस मकान में ले गया वो वाकई 2500 रुपए वाला मकान मालूम होता था। न लॉन, न घास, न फूल। चौथी मंजिल पर एक कमरा था। खिड़कियों पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी ताकि मालिक मकान के तकाजों से घबरा कर किराएदार खिड़की से न कूद जाए। दीवारों पर 30 बरस पुरानी सफेदी थी जो अब स्याही में तब्दील हो रही थी। छत के स्याह जालों के दरमियान एक बिजली का पुराना पंखा लटक रहा था। मैंने भी अपने तस्वर में मंजूर कर लिया था कि चलो बागीचा ना सही, घास ना सही, फूल ना सही, हसीना ना सही, इस कमरे में पंखे का कुंडा तो है जिसे लटक कर जान दे जा सकती है, मगर गुसलखाना कहाँ है?
वो साथ है, दलाल ने एक कोने की तरफ इशारा किया। मैं जल्दी से गुसलखाने में घुसा। गुसलखाने में एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लहीम शहीम औरत जबा शुदा मुर्गी के पर नोच रही थी। मुझे देखकर वो गुंचा दहन हंस दी और जब उसका मोटे मोटे काले होंठों वाला 18 इंच लंबा दहाना खुला तो मुझे उसके अंदर पान की पीक के रंगे हुए दांत बहुत खतरनाक दिखाई दिए। मैं घबराकर पीछे लौटने ही वाला था कि उसने कूले मटकाकर कहा, तुम नए किरायेदार मालूम होते हो। सामिन, इसके बाद इस कहानी ने क्या नया मोड़ लिया और किस तरह से 2500 रुपए वाला मकान जो है वो इस शख्स को मिल सका, हम आपको बताएंगे। मगर प्रोग्राम में अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दोस्ती रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी समातों की नजर कर रहे हैं कृष्ण चंद्र के जादूगर कलम से लिखी एक फिकर अंगेज कहानी जिसका उन्वान है तन्हाई का फूल। अब समात फरमाइए इस कहानी का बकिया हिस्सा।
मालूम होता हूँ कि नहीं, अलबत्ता मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गुसलखाना किसका है, आपका या मेरा? हम दोनों का है, मेरा भी और तुम्हारा भी। अब 50 रुपए में मालिक मकान कमरे के साथ अलग गुसलखाना तो देने से रहा।
मैंने बाहर आकर दलाल से कहा, अगर तुम मुझे 2500 रुपए वाला मकान नहीं दिखा सकते तो मेरे 3 रुपए वापस कर दो। दलाल ने कहा, शरीफों के इलाके में तो 2500 रुपए वाला मकान नहीं मिल सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको गंदी बस्ती में रहने पर एतराज ना हो तो मैं आपको 2500 रुपए वाला मकान दिखा सकता हूँ। चलो चलो, मकान दिखाओ, बातें ना बनाओ। वो मुझे गंदी बस्ती में ले गया। वो शहर का सबसे ज्यादा गंदा इलाका था, जहाँ शहर के नहायत गरीब लोग रहते थे। वहाँ तंग गलियां और गलाजत के अंबार थे।
नुक्कड़ पर उसने गंदी बस्ती के दलाल को ले जाकर कुछ बातें की और फिर दोनों मिलकर मेरे पास आए और मेरे दलाल ने मुझसे कहा, इस बस्ती में 2500 रुपए वाला मकान नहीं है तो फिर किस किराए का मकान है? 16 रुपए वाला मकान है तो 16 रुपए वाले ही दिखाओ। 16 रुपए वाला मकान भी खाली नहीं है, अलबत्ता एक है लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। फिर मेरे लायक क्यों नहीं, मैंने गंदी बस्ती वाले दलाल की जानिब देखकर पूछा। उसने थोड़ी खुजाकर कहा, साहब इस खोली का किराएदार कल ही मर गया। तो बहुत अच्छा है, खोली खाली तो हो गई? हाँ खाली तो हो गई साहब, गंदी बस्ती का दलाल अपनी कोहनी खुजाकर बोला। मगर वो किराएदार अपनी ही तरह गरीब मजदूर था और चूड़ियों के कारखाने में काम करता था।
मजदूर था तो क्या हुआ, आखिर वो चूड़ियां बनाता था, चोरियां तो नहीं करता था? नहीं साहब, ये बात नहीं, गंदी बस्ती का दलाल अपनी कमर खुजाते हुए बोला। था तो चूड़ी बनाने वाला, मगर धूंकनी धूंकते धूंकते और जलती हुई रेत फांकते फांकते वो बीमार हो गया। तो इसमें क्या है, हर आदमी अपनी जिंदगी में बीमार होता है और किसी न किसी वजह से बीमार होता है, चाहे वो रेत फांकने से हो या ज्यादा खाने से। तुम समझे नहीं साहब, गंदी बस्ती का दलाल अपनी रान खुजाते हुए बोला। बात दरअसल ये है कि उसे बुखार हो गया था, जिसे तुम लोग तपदिक बोलते हो। वो इस खोली में 5 साल बीमार रहा और काम करता रहा और अपने जीने के लिए लड़ता रहा, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे और 1 बीवी थी। जब वो मर गया तो उसकी बीवी और बच्चे खोली खाली कर गए, लेकिन वो 16 रुपए किराया नहीं दे सकते थे। वो शहर के बाहर झोंपड़ों में चले गए। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये खोली खाली तो है पर तुम्हारे लायक नहीं।
छोटी सी खोली थी, तारीख दीवारें, चरचराता हुआ दरवाजा, जंग आलूद कुंडी, खिड़की की जंग आलूद सलाखें और इनाहिनी सलाखों के बाहर गंदी ईंटों वाली मोरी। मैंने बाहर से नजर हटाकर फिर अंदर देखा तो एक कोने में पानी का नल नजर आया, जिसके मुंह में मैली धज्जियां ठोंसी गई थी। फिर भी इन धज्जियों के सिरे से पानी सब्जी माइल फर्श पर टिप टिप कर बह रहा था, जैसे खून जख्म से बहता हो। फिर मुझे कोने में मिट्टी का एक गमला नजर आया, जिसमें गुलाब की शाख पर सिर्फ एक फूल था, गुलाब, एक बड़ा सुर्ख फूल। ये क्या है, गंदी बस्ती का दलाल अपने पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है साहब, मेरे लिए? मैंने हैरत से पूछा।
हाँ साहब, दलाल ने कहा, मरते वक्त मरने वाले ने कहा था कि जो कोई मेरी जगह आए उस कमरे में उसे ये गमला दे देना और उसे ये बोलना कि हर रोज इसकी मिट्टी में पानी दे, जिससे ये गुलाब का पौधा हरा रहे। पगला था वो।
यकयक मेरे सारे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई और मैं कांपता हुआ रह गया। फिर इन तारीख दीवारों में घिरे हुए इस गुलाब के फूल को तकने लगा। चारों तरफ घुटन, सीलन, नाउमीदी, और ये फूल अकेला अंधेरे, गंदगी, बदसूरती और भूख में नंगी ईंटों वाले ताकचे में, मकड़ी के लटके हुए गलीज जालों में, जंग आलूद आहनी सलाखों के दरमियान ये फूल खिला इंसान के हौसले, बहादुरी और अजमत की तरह सरबुलंद, फितरत से लड़ता हुआ, मौत पर हंसता हुआ। लेकिन फिर एक दिन ये फूल मुरझा जाएगा। मैंने सोचा इस खोली की गलीज घुटन इसकी सारी शादाबी चूस लेगी, तारीकी इसका रंग रूप छीन लेगी, इस पर मकड़ी के जाले फैल जाएंगे और ये सीली हुई दीवारें चारों तरफ से ताजा हवा को रोके रहेंगी और ये फूल मुरझा जाएगा जैसे वो चूड़ी वाला मजदूर मर गया था।
लेकिन ये फूल जिंदा रहेगा और हर रोज लाखों करोड़ों आदमियों के दिलों में खिलेगा जो चूड़ी बनाते हैं, दफ्तर जाते हैं और ईंट पर ईंट इस तरह जोड़कर रखते हैं जिस तरह मोहब्बत करने वाला इंसान महबूबा के नरमो गुदास हाथ पर अपना हाथ रखता है। ये फूल हर रोज उन इंसानों के दिलों में उगेगा और जिंदगी और मुसलसल जद्दोजहद का जादू जगाएगा। ये फूल मर नहीं सकता, मैं भी जिंदा रहूंगा। मैंने वही खोली किराए पर ले ली और उस दिन से वहीं रहता हूं।
जी दोस्त, ये कहानी आपने समाप्त फरमाई। हमें उम्मीद है कि ये कहानी काफी देर तक आपके जहनों पर अपना तसल्लुत जमाए रखेगी।
और सामीन, अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं चंद गजलियात, और ये गजलियात हमने मुख्तलिफ शोरा की शायरी में से मुंतखब की हैं और आपकी समातों की नजर कर रहे हैं। सबसे पहले समात फरमाइए मुनीर सैफी के कलम का शाहकार, उनकी तहरीर करदा खूबसूरत गजल। वो मिजाज आशना न था मेरा, बुझ गया सो दिया न था मेरा। वो मिजाज आशना न था मेरा, बुझ गया सो दिया न था मेरा। जख्म भी तेरी शक्ल ऐसे न थे, दर्द भी आईना न था मेरा।
वाह वाह।
और चैन की नींद सोया करता था, चैन की नींद सोया करता था, खुद से जब राबता न था मेरा।
बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात कही।
चैन की नींद सोया करता था, खुद से जब राबता न था मेरा। सारे रास्ते थे मेहरबा मुझ पर, जब कोई रास्ता न था मेरा। अपने हाथों पे भी न बैत की, इतना भी सिलसिला न था मेरा। और भी कोई थी परेशानी, इश्क ही मसला न था मेरा।
क्या बात है।
था मयसर मैं खुद को उस लम्हे, जब कहीं भी पता न था मेरा।
वाह।
देखता डूबते हुए खुद को, इस कदर हौसला न था मेरा। और अब जहाँ राख उड़ती रहती है, उस जगह आशियाना था मेरा।
क्या बात है।
मौत ही में निजात मुमकिन थी, हल कोई दूसरा न था मेरा।
बहुत अच्छा।
बात सब वक्त की है मुनीर, बात सब वक्त वक्त की है मुनीर। वो भी दिन थे जमाना था मेरा।
वाह।
वो मिजाज आशना ना था मेरा, बुझ किया सो दिया ना था मेरा।
भाई बहुत खूब। सामिन, यहीं पर प्रोग्राम में वक्त है एक वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। दोस्त, ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना। दोस्त, आपकी समातों के नजर कर रहे हैं अनवार फरोज की शायरी में से एक बहुत ही खूबसूरत गजल, जिसका मतलब कुछ यूं है। फिर कोई ताजा सबक चाहते हैं, हम तो बस राहे अदक चाहते हैं।
वाह वाह।
फिर कोई ताजा सबक चाहते हैं, हम तो बस राहे अदक चाहते हैं। ताज और तख्त की ख्वाहिश ही नहीं, हम फकत जीने का हक चाहते हैं।
क्या बात है। वाह वाह।
ताज और तख्त की ख्वाहिश ही नहीं, हम फकत जीने का हक चाहते हैं। हम अंधेरों के नहीं हैं आदि, हम अंधेरों के नहीं हैं आदि, हम तो सूरज की रमक चाहते हैं।
वाह वाह।
रास आती नहीं खुशियां हमको, रास आती नहीं खुशियां हमको, रोज एक ताजा कलक चाहते हैं। हमको दरकार है सूखी रोटी, हमको दरकार है सूखी रोटी, शाह सोने का वरक चाहते हैं। वो है फिरोज पिजारी जर के, वो है फिरोज पुजारी जर के हम तो छीना गया हक चाहते हैं,
चाहते हैं।
वो है फिरोज पुजारी जर के हम तो छीना गया हक चाहते हैं, फिर कोई ताजा सबक चाहते हैं, हम तो बस राहे अदक चाहते हैं।
बहुत आला, बड़ी ये खूबसूरत गजल थी। और सामईन अब आपकी समातों की नजर करते हैं तनवीर सहबाई की एक खूबसूरत गजल। हां बेरुखी में उम्र ही सारी गुजर गई, हां बेरुखी में उम्र ही सारी गुजर गई, देखा किसी ने प्यार से किस्मत समर गई।
वाह वाह क्या बात है।
हां बेरुखी में उम्र ही सारी गुजर गई, देखा किसी ने प्यार से किस्मत समर गई, चेहरा लहू की आग से मिसले गुलाब था, देखा उसे तो आंख में खुशबू उतर गई।
खुशबू उतर गई क्या बात है।
और तोहफा नहीं ये कैस का इजहारे इश्क है,
क्या बात।
तूफान नहीं ये कैस का इजहारे इश्क है, सहरा की रेत जोशे जनू में बिफर गई, भूला नहीं हूँ ख्वाब के मंजर का जायका,
क्या बात।
नखमे उगे हुए थे जहाँ तक नजर
गई,
और उसने बना लिए हैं हवाओं में रास्ते,
वाह।
उसने बना लिए हैं हवाओं में रास्ते, आंखें हैं बंद फिर भी बताऊं किधर गई, तेरे सिवा नजर में समाया नहीं कोई, तासीर आईने की नजर में उतर गई, और बरगो समर तो शाख का इजहारे जात हैं, नाजुक बहुत थी बोझ से फूलों के मर गई।
वाह 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 क्या बात है।
बरगो समर तो शाख का इजहारे जात हैं, नाजुक बहुत थी बोझ से फूलों के मर गई, चारों तरफ से ऊंचे मकानों में घिर गया, निकला जो चांद चांदनी जाने किधर गई।
वाह क्या बात।
और दुनिया किसी वजूद के मरने से कम ना हो, दुनिया किसी वजूद के मरने से कम ना हो, ऐसी हवा चली है कलाओं को भर गई।
वाह।
हाँ बेरुखी में उम्र ही सारी गुजर गई, देखा किसी ने प्यार से किस्मत समर गई।
वाह क्या बात है।
और सामईन इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइंदा हफ्ते तक के लिए अपने मेजबान आमिर सुहेल और यूनस सनी को इजाजत दें।
Radio America, Asia.